एहेस्केल अध्याय 20। एहेस्केल अध्याय 20 पद 1। सातवें वर्ष के पांचवें महीने के दसवें दिन को इसराइल के कितने पुरनियों यहोवा से प्रश्न करने को आए और मेरे सामने बैठ गए। ये उनकी प्रथा थी। हम पहले भी देख चुके हैं कि प्राचीन उसके पास आकर बैठे और उससे निवेदन किया कि वो यहोवा से पूछे। एहेस्केल अध्याय 20 पद 2 और 3। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इसराइली पुरनियों से ये कह। आपको ध्यान होगा कि पहले ही परमेश्वर कह चुका था वो उनकी जिज्ञासा पर क्यों ध्यान दे, क्योंकि उनके मन में मूर्तियां बसी हुई थी। परमेश्वर उन्हें उत्तर नहीं दे रहा था। एहेस्केल अध्याय 20 पद 3 में आगे लिखा है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, क्या तुम मुझसे प्रश्न करने को आए हो? प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध तुम मुझसे प्रश्न करने ना पाओगे। तुम मुझसे परामर्श लेने आए हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। एहेस्केल अध्याय 20 पद 4 और 5। हे मनुष्य के संतान, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? क्या तू उनका न्याय ना करेगा? उनके पुरखाओं के घिनौने काम उन्हें जता दे और उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, जिस दिन मैंने इसराइल को चुन लिया और याकूब के घराने के वंश से शपथ खाई और मिस्र देश में अपने को उन पर प्रकट किया। अब परमेश्वर मिस्र देश की घटनाएं याद दिलाता है और कहता है कि उन्हें पूरी गाथा सुना कि मिस्र देश से कनान तक क्या हुआ। एहेस्केल अध्याय 20 पद 5 और 6। और उनसे शपथ खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। उसी दिन मैंने उनसे ये भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। वो सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आज आप इसराइल जाएंगे तो वहां पुनरुद्धार का बहुत बड़ा काम देखेंगे। उन्होंने संपूर्ण देश में करोड़ों वृक्ष लगा दिए हैं। इसके परिणाम स्वरूप वहां के वातावरण में परिवर्तन आ गया है। क्योंकि हरियाली बढ़ गई है इसलिए वहां वर्षा भी अधिक होने लगी है। अब वो देश फिर से झरनों और हरियाली का देश हो गया है। उन्होंने जल निकास और सफेदे यूकेलिप्टस के पेड़ों को लगाने के द्वारा दलदल के क्षेत्रों को भी बगानों में परिवर्तित कर दिया है। शारोन जो कभी दलदल होता था, इस समय संतरों का बगान बना हुआ है। इसी प्रकार मगीदो की घाटी जो कभी दलदल थी, आज वहां खेती लहलहा रही है। वे बेरशीबा तक पानी ले आए हैं और पूरे देश का ढांचा ही बदल गया है। जब परमेश्वर इसराइल के वंशजों को वहां लेकर आया था, तब वो घना जंगल था जिसमें जल के अनेक सोते थे। यही वो देश था जहां दूध और शहद बहता था। परंतु आज वहां लोग इसका ठट्ठा करके कहते हैं, परमेश्वर ने सृष्टि करते समय दो स्वर्ग दूतों को चट्टाने बिखराने के लिए पृथ्वी पर भेजा। एक ने तो ईमानदारी से पूरी पृथ्वी पर चट्टाने बिखरा दी, परंतु दूसरा कामचोर था। उसने एक ही स्थान पर अर्थात इसराइल देश में सारी चट्टाने डाल दी। ये सत्य है कि वो देश एक चट्टानी क्षेत्र है, परंतु वो पहले ऐसा नहीं था। जब तुर्कों ने वहां अधिकार किया, तब उन्होंने भूमि को उघाड़ने के लिए सारे पेड़ काट डाले थे। पेड़ नहीं होने के कारण मिट्टी बरसात के पानी में बह गई और भूमि बंजर रेगिस्तान बन गई। जो मिट्टी बरसात के पानी में बह गई थी उस कारण वो झरनों में जमा हो गई और वहां की भूमि दलदल हो गई। अब वहां दो ही चीजें रह गई थी, दलदल और चट्टाने। परंतु इन्होंने क्या किया कि चट्टानी क्षेत्रों में चीड़ के वृक्ष उगा दिए, क्योंकि उनकी जड़ें चट्टानों की दरारों में प्रवेश करके उन्हें तोड़ देती है, जिसके कारण सताई मिट्टी भी उत्पत्ति होती है। ये वन रोपण का काम वैज्ञानिक रीति से किया गया है। वहां कृषि विज्ञान से संबंधित बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। उन्होंने दलदल में सफेदे के पेड़ लगा दिए हैं, क्योंकि वे बहुत अधिक जल शोषण करते हैं। इनके लगाने से दलदल समाप्त हो गए और स्वच्छ जल फिर से नदी के रूप में भूमध्य सागर की ओर बह निकला। अब वहां दलदल नहीं है। पुनरुद्धार का ये अद्भुत काम देखने में एक रोमांचक बात है। जब इसराइल के वंशज वहां आए थे तब वो जंगल और नदियों का एक मनोरम स्थान था। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो संसार के प्राकृतिक सौंदर्यों में से एक था। आज जहां जहां पुनरुद्धार का काम हुआ है वहां पर्याप्त वर्षा होने के कारण उन क्षेत्रों का प्राकृतिक सौंदर्य लौट आया है, जैसे गलील सागर और उसका परिवेश। तेलदान नामक स्थान में जल के झरने आदि अत्यधिक मनोरम है और आकर्षक स्थानों में से एक है। उनका संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र सुधर रहा है और आकर्षक होता जा रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैंने उनके लिए ये देश खोजा था जहां दूध और शहद बहता था। ये संपूर्ण क्षेत्र की महिमा थी। एहेस्केल अध्याय 20 पद 7। फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हरेक की आंखें लगी है उन्हें फेंक दो। जिस समय वे मिस्र में थे उस समय परमेश्वर ने उनसे ये कहा था। एहेस्केल अध्याय 20 पद 7 से लेकर 11 तक। मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध ना करो, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी ना चाही। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनको किसी ने फेंका नहीं और ना मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। तब मैंने कहा, मैं यही मिस्र देश के बीच तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और पूरा कोप दिखाऊंगा। तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि जिनके बीच वे थे और जिनके देखते हुए मैंने उनको मिस्र देश से निकालने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया था, उन जातियों के सामने वे अपवित्र ना ठहरे। मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया। वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। इस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें विधियां एवं उचित विचार प्रदान किए, जिससे कि उनका जीवन परमेश्वर के सामने उचित ठहरे। एहेस्केल अध्याय 20 पद 12। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच में चिन्ह ठहरे। विश्राम दिन अन्य जातियों के लिए चिन्ह नहीं था। कुछ लोगों को सबत के दिन की धुन रहती है। वे कहते हैं कि सबत के दिन आराधना करना चाहिए। मैं तो प्रतिदिन आराधना करता हूं। आप सबत के दिन को विश्राम दिवस क्यों नहीं मानते? क्योंकि मैं यहूदी नहीं हूं। ये यहूदियों और परमेश्वर के मध्य एक चिन्ह है। निर्गमन 31 अध्याय 13 पद में यहोवा ने विश्राम दिन की आज्ञा दी। निर्गमन अध्याय 31 पद 17 उसे चिन्ह बताता है। इस्राएल के वंशज सबत के दिन पवित्र तथा पीढ़ी से पीढ़ी अटल वाचा माने। ये मेरे और उनके बीच सदा का चिन्ह होगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। अतः ये यहोवा और इस्राएल के मध्य एक चिन्ह है। मैं वो व्यक्ति हूं जिसके लिए पौलुस कहता है, एक मनुष्य एक दिन को दूसरे से बड़ा समझते मैं नहीं, परंतु दूसरा सब दिनों को बराबर समझे। मैं ऐसा ही हूं। मैं एक नीरस मनुष्य हूं, क्योंकि मैं सब दिनों को बराबर मानता हूं, जैसे जन्मदिन आदि। कुछ लोग विशेष दिनों को मानकर उत्साहित होते हैं, ओह ये एक विशेष दिन है, परंतु मेरे लिए तो हर एक दिन परमेश्वर का दिन है। एहेस्केल अध्याय 20 पद 13। तो भी इसराइल के घराने ने जंगल में मुझसे बलवा किया, वे मेरी विधियों पर ना चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वो उनके कारण जीवित रहेगा, और उन्होंने मेरे विश्राम दिनों को अति अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर इनका अंत कर डालूंगा। क्रोधित होकर परमेश्वर ने मूसा से कहा, पीछे हट, क्योंकि मैं उन्हें नाश करने वाला हूं। एहेस्केल अध्याय 20 पद 14। परंतु मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वे उन जातियों के सामने जिनके देखते मैं उनको निकाल लाया था अपवित्र ना ठहरे। उन्होंने ना तो मिस्र में मेरी आज्ञा मानी और ना ही जंगल में। एहेस्केल अध्याय 20 पद 15। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि जो देश मैंने उनको दे दिया और जो सब देशों का शिरोमणि है, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसमें उन्हें ना पहुंचाऊंगा। महिमा से पूर्ण एक देश। एहेस्केल अध्याय 20 पद 16 से लेकर 18 तक। क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और मेरी विधियों पर ना चले और मेरे विश्राम दिन अपवित्र किए थे, इसलिए कि उनका मन उनकी मूर्तों की ओर लगा रहा, तो भी मैंने उन पर कृपा की दृष्टि की और उन्हें नाश ना किया और ना जंगल में पूरी रीति से उनका अंत कर डाला। फिर मैंने जंगल में उनके संतान से कहा, अतः उसने अवज्ञाकारी पीढ़ी का अंत किया। मैंने जंगल में उनकी संतान से कहा। एहेस्केल अध्याय 20 पद 18 से 23 तक। अपने पुरखाओं की विधियों पर ना चलो, ना उनकी रीतियों को मानो और ना उनकी मूर्तें पूजकर अपने को अशुद्ध ना करो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों के मानने में चौकसी करो और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो, कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परंतु उनकी संतान ने भी मुझसे बलवा किया, वे मेरी विधियों पर ना चले, ना मेरे नियमों के मानने में चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वो उनके कारण जीवित रहेगा। मेरे विश्राम दिनों को उन्होंने अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में उन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर अपना कोप दिखलाऊंगा। तो भी मैंने हाथ खींच लिया और अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि उन जातियों के सामने जिनके देखते हुए मैं उन्हें निकाल लाया था वे अपवित्र न ठहरे। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि कि मैं तुम्हें जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा, देखो यहोवा तुम्हें सब जातियों में फैला देगा, वो तुम्हें समस्त जातियों में तितर बितर करेगा। ये मूसा का भजन है जो उसने उन्हें सिखाया था कि जब ऐसा हो तब इस भजन के द्वारा वे याद करें कि परमेश्वर ने उन्हें बहुत पहले चेतावनी दे दी थी। यदि तुम परमेश्वर से दूर हो जाओगे तब वो तुम्हें बैरियों के हाथ में कर देगा और तुम अन्य जातियों में ले जाए जाओगे। तुम सबके मुंह का श्राप और ठट्टे का कारण बन जाओगे। एहेस्केल अध्याय 20 पद 24 और 25। क्योंकि उन्होंने मेरे नियम ना माने, मेरी विधियों को तुच्छ जाना, मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया और अपने पुरखाओं की मूर्तों की ओर उनकी आंखें लगी रहीं, फिर मैंने उनके लिए ऐसी ऐसी विधियां ठहराई जो अच्छी न थी और ऐसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित न रह सके। परमेश्वर ने कहा, ठीक है मैं देखता हूं। एहेस्केल अध्याय 20 पद 39। जाकर अपनी मूर्तों की उपासना करो। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने कहा, ठीक है यदि तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो करो। ये तो भयानक है जब परमेश्वर मनुष्य को उसकी अभिलाषा पूरी करने को छोड़ दे, तब मनुष्य स्वयं को नष्ट करे। परमेश्वर की व्यवस्था उन्हें रास नहीं आई। एहेस्केल अध्याय 20 पद 26 से लेकर 28 तक, अर्थात वे अपने सब पहलोटों को आग में होम करने लगे। इस रीति मैंने उन्हें उन्हीं की भेंटों के द्वारा अशुद्ध किया जिससे उन्हें निर्वंश कर डालूं, और तब वे जान ले कि मैं यहोवा हूं। हे मनुष्य के संतान, तू इसराइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने इसमें भी मेरी निंदा की कि उन्होंने मेरे विश्वासघात किया, क्योंकि जब मैंने उनको उस देश में पहुंचाया जिसको उन्हें देने की शपथ मैंने उनसे खाई थी, तब वे हर एक ऊंचे टीले और हर एक घने वृक्ष जंगल पर दृष्टि करके वहीं अपने मेल बलि करने लगे और वहीं रिस दिलाने वाली अपने भेंटे चढ़ाने लगे, वहीं अपना सुखदायक सुगंध द्रव्य जलाने लगे और वहीं अपने तपावन देने लगे। अंत में परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञा के देश में ले ही आया और वे पहाड़ों और वहां के सौंदर्य से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उन पहाड़ों पर ही मूर्ति पूजा करना आरंभ कर दी। एहेस्केल अध्याय 20 पद 29। तब मैंने उनसे पूछा, जिस ऊंचे स्थान को तुम लोग जाते हो उससे क्या प्रयोजन है? इसी से उसका नाम आज तक बामा कहलाता है, बामा अर्थात ऊंचा स्थान। एहेस्केल अध्याय 20 पद 30 और 31। इसलिए इसराइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा तुमसे ये पूछता है, क्या तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध होकर और उनके घिनौने कामों के अनुसार व्यभिचारिणी की नाई काम करते हो? आज तक जब जब तुम अपनी भेंटे चढ़ाते और अपने बच्चों को होम करके आग में चढ़ाते हो, तब तब तुम अपनी मूर्तों के निमित्त अशुद्ध ठहरते हो। हे इसराइल के घराने, क्या तुम मुझसे पूछने पाओगे? प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, तुम मुझसे पूछने ना पाओगे। वृद्ध एहेस्केल से परमेश्वर का वचन पूछने का आग्रह कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि उन्हें मिस्र का इतिहास सुना दे और कह कि क्या मैं तुम्हारा उत्तरदायी हूं? कदापि नहीं। एहेस्केल अध्याय 20 पद 32 से लेकर 38 तक। जो बात तुम्हारे मन में आती है कि हम काट और पत्थर के उपासक होकर अन्य जातियों और देश देश के कुलों के समान हो जाएंगे, वो किसी भांति पूरी नहीं होने की। प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की शपथ मैं निश्चय बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य करूंगा। मैं बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हो गए थे इकट्ठा करूंगा, और मैं तुम्हें देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर वहां आमने सामने तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में मुकदमा लड़ता था, उसी प्रकार तुमसे मुकदमा लड़ूंगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। मैं तुम में से सब बलवाइयों को निकालकर जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें से मैं उन्हें निकाल दूंगा, परंतु इसराइल के देश में घुसने ना दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर कहता है, मैं एक दिन फिर आऊंगा, जो भावी घटना है, परंतु वो निश्चय ही उन्हें लाठी बंधुआई के नीचे से निकालेगा कि वे वाचा में प्रवेश करें। वहां वे लोग हैं जिनकी परमेश्वर सुधि लेगा और उन्हें उस देश में लाएगा। वो उन्हें आशीष देगा और उनकी ओर होगा। वो राज्य करेगा और वे उसके अधीन समर्पण करेंगे। एहेस्केल अध्याय 20 पद 39 से लेकर 41 तक। और हे इसराइल के घराने, तुमसे तो परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जाकर अपनी अपनी मूर्तों की उपासना करो, और यदि तुम मेरी ना सुनोगे तो आगे को भी यही किया करो, परंतु मेरे पवित्र नाम को अपनी भेंटों और मूर्तों के द्वारा फिर अपवित्र ना करना। क्योंकि परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि इसराइल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इसराइल के ऊंचे पर्वत पर, सबका सब मेरी उपासना करेंगे। वही मैं उनसे प्रसन्न हूंगा और वही मैं तुम्हारी उठाई हुई भेंटे और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा। जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूं, जब यीशु फिर से आएगा और यहूदी अपने देश में एकत्र होंगे, तब परमेश्वर उन्हें अपनी प्रजा स्वीकार करेगा। एहेस्केल अध्याय 20 पद 41 से लेकर 43 तक। तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा, और जब मैं तुम्हें इसराइल के देश में पहुंचाऊं जिसके देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। और वहां तुम अपनी चाल चलन और अपने सब कामों को जिनके करने से तुम अशुद्ध हुए हो स्मरण करोगे, और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरोगे। जकरिया की भविष्यवाणी है, जकरिया अध्याय 12 पद 10। तब वे मुझे ताकेंगे, मसीह को अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। वे तब समझेंगे कि उन्होंने क्या किया और मसीहा का त्याग करने में उन्होंने उसे खो दिया। उनका विलाप उस समय महिमा का कारण होगा, क्योंकि वे पश्चाताप करेंगे। ये उनका जीवन और महिमा में पुनस्थापना होगा। एहेस्केल अध्याय 20 पद 44 से लेकर 49 तक। और हे इसराइल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूं, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख दक्षिण की ओर कर। दक्षिण की ओर वचन सुना और दक्षिण देश के वन के विषय में भविष्यवाणी कर, और दक्षिण देश के वन से कह, यहोवा का ये वचन सुन। प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुझ में आग लगाऊंगा और तुझ में क्या हरे क्या सूखे जितने पेड़ हैं सबको वो भस्म करेगी। उसकी धधकती ज्वाला न बुझेगी और उसके कारण दक्षिण से उत्तर तक सबके मुख जुलस जाएंगे। तब सब प्राणियों को सूझ पड़ेगा कि ये आग यहोवा की लगाई हुई है और वो कभी न बुझेगी। तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, लोग तो मेरे विषय में कहा करते हैं कि क्या वो दृष्टांत ही का कहने वाला नहीं है। एहेस्केल ने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, लोग तो मेरे विषय में कहा करते हैं क्या वो दृष्टांत ही का कहने वाला नहीं है। अब यदि मैं उनसे ये कहूंगा तो वे मुझे बहुत खरी खोटी सुनाएंगे, परमेश्वर इस दृष्टांत के द्वारा यरूशलेम के जलाए जाने और उसके अंत की भविष्यवाणी करता है। ये अंतिम भविष्यवाणी है, क्योंकि इसके बाद यरूशलेम के विनाश का समाचार उन्हें प्राप्त हुआ था। अध्याय 21 से हम भविष्यवाणियों की एक नई श्रृंखला में प्रवेश करेंगे। यरूशलेम का नाश हो चुका है और बाबुल में बंधुओं का इसका बोध हो चुका है। प्रभु आपके साथ हो, आपको आशीष दे और सामर्थ प्रदान करे। पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर हो और उसकी सुंदरता से आपका जीवन तेजोमय हो। परमेश्वर अपनी आत्मा की परिपूर्णता को आप पर उंडेले और आपका जीवन आपके पड़ोसियों के लिए प्रभु के अनुग्रह और प्रेम की प्रभावी साक्षी हो, यीशु के नाम में।